स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 12 नवंबर और दिन मंगलवार। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू, शिवसेना ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में बीजेपी को झटका, एनडीए सहयोगी ने दिखाए बगावती तेवर।
हमने अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने विषयों को हमने रखा है, अपने मैंने कहा कि दो विषय हमारे थे।
अयोध्या में राम मंदिर बनाने में वीएचपी की क्या होगी भूमिका?
मुझको विश्वास है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के संतों, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्वास में लेकर अयोध्या में मंदिर बनाने का काम प्रारंभ करेंगे।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। महाराष्ट्र में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए समय नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में बातचीत का दौर जारी है। कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता मुंबई में हैं। इन लोगों ने शिवसेना से भी संपर्क किया हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 17 दिन हो गए हैं। बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को राजनीतिक शरण देने के लिए मैक्सिको ले जाने वाला विमान पैरागुए में उतर चुका है। मोरालेस ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद मंगलवार को मैक्सिको में राजनीतिक शरण की पेशकश स्वीकार की थी। और मैक्सिको सरकार के विमान में बोलीविया से मैक्सिको के लिए रवाना हुए थे। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद मोरालेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने देश बोलीविया को छोड़ते हुए उन्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वे और अधिक ताकत और ऊर्जा के साथ वापस लौटेंगे। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब सेना प्रमुख ने हस्तक्षेप करते हुए मोरालेस से इस्तीफा देने की अपील की। रविवार को हुई घटनाओं व निष्कासन को उन्होंने एक तरह का तख्तपलट भी बताया है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने मोरालेस के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की निंदा की है और उसे एक साजिश करार दिया है।
Y este golpe de estado, esta emboscada que se montó contra Evo Morales, se montó desde el imperialismo norteamericano.
इवो मोरालेस के खिलाफ यह तख्तापलट अमेरिका से कराया गया और आज वे इसकी सराहना कर रहे हैं। और ये वेनेजुएला के लिए भी एक चेतावनी है। हमें सावधान होने की ज़रूरत है और हम एक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हम उन्हें वेनेजुएला की संप्रभुता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और शांति के लिए जवाब देंगे। हम एक बार फिर जीत के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ये थे वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। इसराइल के नेता बिन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इसराइल द्वारा इस्लामिक जिहाद के कमांडर की हत्या के बाद गाजा में चरमपंथियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। बहा अबू अलता अपनी पत्नी के साथ अपने घर में ही इसराइल के एक हमले में मारा गए और इसराइल का कहना है कि वह उसके क्षेत्र में हुए सैकड़ों हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस हत्या के बाद जवाबी कार्रवाई में गाजा की ओर से दर्जनों रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इसराइली विमानों ने और भी हमले किए। गाजा में इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ नेता खादर हबीब ने कहा, फलस्तीनी इस हत्या का जवाब ضرور دیں گے۔
نحن لسنا من بدأنا هذا التصعيد۔
हमने इसकी शुरुआत बिल्कुल नहीं की। जिन्होंने इसे शुरू किया है उन्हें शांत रहना चाहिए था, लेकिन अब हमारे लोग बहुत गुस्से में हैं और इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हमने अपनी कार्रवाई इसराइल के हमले के बाद शुरू की। ये थे इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ नेता खादर हबीब के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकॉन्ग में लंबे समय से चल रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को एक बार फिर हिंसा भड़क गई। पुलिस ने एक कार्यकर्ता पर गोली चलाई। हांगकॉन्ग में कार्यकर्ताओं ने फिर से सड़कों को अवरुद्ध किया और पुलिस के साथ लगातार झड़पें भी हुई। दंगारोधी पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में आंसू गैस के गोले भी छोड़े। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि देश की अर्थव्यवस्था एक गंभीर स्थिति में है और एक नई सरकार के तत्काल गठन की जरूरत है। जान कुबिस ने कहा कि आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी से नाराज लोगों ने हफ्तों तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए थे। केन्या की पुलिस का कहना है कि विश्वविद्यालय के छात्र के साथ मारपीट करने वाले 4 अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें ड्यूटी से तुरंत निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को एक इमारत से रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप में राजधानी नैरोबी के उत्तर जुजा में 4 अधिकारी एक छात्र को लात मारते और पीटते हुए दिखे। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूं इकबाल अहमद। آج ہے نومبر کی 12 تاریخ اور دن ہے منگلوار. آپ اس کارکرم کو اپنے ریڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی لائیو سن سکتے ہیں. مہاراشٹر میں راشٹرپتی شاسن لاگو کر دیا گیا ہے. راجیہ بھگت سنگھ کوشیاری نے حالانکہ آج این سی پی کو شام 8:30 تک کا سمے دیا تھا, لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے راشٹرپتی لاگو کرنے کی سفارش کی. ان کے انمودن پر پردھان منتری نریندر مودی کی ادھیکشتا میں کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی. کیبنیٹ نے راشٹرپتی شاسن لگانے کی سفارش کی, جسے راشٹرپتی رام ناتھ کووند نے منظور کر لیا. کانگریس پروکتا رندیپ سرجیوالا نے ٹویٹ کر راشٹرپتی شاسن لاگو کیے جانے کی آلوچنا کی ہے. انہوں نے کہا کہ راجیہ نے راشٹرپتی شاسن کی سفارش کر کے لوکتانترک نیائے کا ہنن کیا ہے اور سمویدھانک پرکریا کا مذاق بنایا ہے. اس بیچ کانگریس کے ورشٹھ نیتا احمد پٹیل, کے سی وینوگوپال اور ملک ارجن کھاڑگے نے آج شام شرد پوار سے ملنے ممبئی پہنچے, اور ابھی جو مجھے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق وہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے, اور اس وقت کانگریس کے ورشٹھ نیتا اور شرد پوار ایک سنیکت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈیو مینیجر سے کوشش کریں گے, یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر وہ ہم لائیو سن سکتے ہیں تو آپ کو وہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں.
گٹھبندھن کر کے لڑا تھا ان دونوں پکشوں کے ورشٹھ نیتاؤں نے ممبئی میں ورتمان راجنیتک پرستھتی کے بارے میں چرچا کی. شیو سینا
این سی پی کے ورشٹھ نیتا پرفل پٹیل اس سمے بول رہے تھے, اور اس وقت سیدھے چلتے ہیں ممبئی جہاں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے بی بی سی کے ساتھ ہی میوریش. میوریش, حالانکہ لائیو پریس کانفرنس چل رہی ہے, کیا کچھ پتا چل سکا ہے کہ کن مدوں پر این سی پی اور کانگریس کی بیٹھک میں بات چیت ہوئی ہے؟
اقبال جی, میں تو اندر پریس کانفرنس سن پا نہیں رہا ہوں, میں باہر آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن ان مدوں پر ضرور چرچا ہونی تھی کہ کیا اگر کانگریس کو اس شیو سینا این سی پی گٹھ بندھن کے سرکار کو سپورٹ کرنا ہے, اور اسی سوال میں کانگریس دو دن الجھی رہی, تو وہ کیسے آگے ہو سکے, کیا وہ کانگریس سرکار میں آئے یا پھر باہر سے آئے. کانگریس کے نیتا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں پر باتیں ہونی چاہیے تبھی نرنے لے سکتے ہیں. کانگریس میں اندرونی دو گٹ پڑے تھے, جو سپورٹ کے پکش میں کچھ تھے, سپورٹ کے خلاف میں کچھ تھے, تو ان ساروں مدوں پر اگر یہ سرکار بنتی ہے این سی پی کانگریس اور شیو سینا کی, تو کیسے آگے لیا جائے, کیا فارمولا ہوگا, کامن منیمم پروگرام کیا ہوگا, انہیں مدوں پر چرچا ہوئی ہوگی. اور اب وہ پرفل پٹیل اور کانگریس کے سارے نیتا بتا رہے ہیں. آج میں بتا دوں کہ 8:30 تک راشٹرپتی راجیہ کو جا کر بتانا تھا این سی پی کو کہ وہ سرکار کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن قریب 12 کے آس پاس ہی این سی پی کو شاید یہ پتا چل گیا کہ وہ نمبر نہیں جٹا پائیں گے اور کانگریس اور شیو سینا کے ساتھ اور باتیں کرنی پڑے. تو انہوں نے راجیہ کو ایک خط لکھا تھا دوپہر میں کہ انہیں 48 اور بڑھا کر ملے, لیکن راجیہ نے سیدھا راشٹرپتی شاسن کا ریکمنڈیشن جو ہے وہ کیندر سرکار کو بھیج دیا.
جی, تو میوریش یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ این سی پی جب 8:30 شام تک کا ان کے پاس سمے تھا, تو آپ بتا رہے ہیں کہ 12:00 کے آس پاس ہی انہوں نے پھر راجیہ سے سمپرک کیوں کیا؟ وہ بات چیت تو ویسے بھی جاری رہ سکتی تھی, 8:30 تک کا تو ان کے پاس سمے تھا.
اس کی ایک وجہ تو سیکھی ہے کہ وہ آج 8:30 تک جو بھی ساری باتوں پر کانگریس بات کرنا چاہتی تھی, جو بھی پولیٹیکل سولوشن ہے یا پھر آگے جا کے سرکار میں جا کر جو بھی ایڈمنسٹریٹو سولوشن ہے, وہ ان کے پاس نہیں تھا, اور کانگریس اس مدے پر اس مسئلے انتم نرنے تک نہیں آ پا رہی تھی, تو شاید انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کو اور سمے لگے گا. ساتھ ہی ساتھ شیو سینا کے ساتھ جو بھی ان کے وچار دھارا کے متبھید ہیں, باقی چیزوں کے متبھید ہیں, یہ تینوں الگ الگ پارٹی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑی ہیں چناؤ میں, تو کیا سولوشن ہوگا یہ سپشٹ تھا شاید ان کے سامنے کہ 8:30 تک وہ اس کا سولوشن نہیں نکال پائیں گے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو سمے ہے وہ بڑھانے کی مانگ کی.
جی, اور میوریش اس وقت ادھو ٹھاکرے کہاں ہیں, کوئی جانکاری آپ کے پاس؟
ابھی ادھو ٹھاکرے ممبئی کے ہی ملاڈ میں جو ریٹریٹ نام کا ریسورٹ ہے وہاں پہ ان کے سارے ایم ایل ایز جو ہیں 57 ایم ایل ایز جو شیو سینا کے چن کے آئے ان کو رکھا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. آج دن بھر ادھو ٹھاکرے صرف 2 گھر سے باہر نکلے, صبح وہ سنجے راؤت سے ملنے پہنچے تھے اسپتال میں, اور بعد میں وہ اب شام میں اپنے ایم ایل ایز کے یہاں پہ پہنچے ہیں. شاید وہ ان کو بتا دیں کہ آگے کی پولیٹیکل سولوشن کے بارے میں, کیا ان کی این سی پی سے بات ہو رہی ہے, کیا شیو سینا اب آگے کیسے جا سکتی ہے جب ان کا کلیم کل ہاتھ سے چھوٹ گیا, شاید اس کے بارے میں اپنے ایم ایل ایز کو وہ بتا رہے ہیں.
جی میوریش, میں اس وقت آپ کو روکنا چاہوں گا, کانگریس کے ورشٹھ نیتا احمد پٹیل اس وقت بول رہے ہیں, ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا بولتے ہیں.
और उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता होनी बहुत ही जरूरी है, वहां पर कैसे लेटर दिया जा सकता है। तो उसी लिए आज सुबह में फिर से बात हुई कांग्रेस अध्यक्ष जी शरद जी से, और शरद जी ने कहा कि यहाँ आ जाए तो हम लोग बात कर लें। तो उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि हमारी सहयोगी रही है चुनाव से पहले भी और अभी भी हमारी सहयोगी है, उनको कंसल्ट किए बिना हम कोई निर्णय पे नहीं आ सकते। तो उसी लिए आज यहाँ पे आज हम आए हुए थे, बैठक हुई और स्टेटमेंट आपके सामने है। धन्यवाद। वन बाय वन बाबा, वन बाय वन आई विल रिप्लाई, वन बाय वन, वन बाय। कल पहली बार, जैसे अभी कहा गया कि अधिकृत तरीके से पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट को फोन किया था और उन्हें सपोर्ट के लिए कहा था कि हमें समर्थन दीजिए, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो सहयोगी हैं उनसे साथ हम बात करें। शाम को 7:30 बजे से पहले शरद जी से बात हुई और ये तय किया गया कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे स्पष्टीकरण करना जरूरी है।
इस बीच हमारे पास मुंबई से के वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अनुराग, ये बताएं कि कांग्रेस के लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा कि शिवसेना के नेतृत्व वाली किसी सरकार को समर्थन देना।
देखिए, शिवसेना के साथ हमने ये असमंजस हमेशा रहा है कि कांग्रेस का असमंजस शिवसेना को लेके लिए रहा है। अब उसको ये तय करना पड़ेगा कि क्या शिवसेना से दोस्ती और बीजेपी से अदावत, इसमें से उसको चुनाव करना। अब राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र जैसे राज्य में लग गया तो इसका मतलब फिर से एक तरह से राज्य बीजेपी के पास चला गया। तो एक मौका आया था महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्य को अपने हाथ में लेने का, और वो मेरे ख्याल से कांग्रेस चूक गई है ना। केवल 10% विधायक ही हैं कांग्रेस के पास, इतने में वो उसको इतने ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं थी, है ना।
तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने फैसला करने में देरी की है?
जी, इतनी जरूरत नहीं थी। 10% जिसके पास एमएलए हो, 288 के विधानसभा, सिर्फ 24 एमएलए, तो ये इतना देर नहीं लगाने, एक निर्णय कर लेने इधर या उधर, है ना। चूक गए और ये चूक बहुत हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंटल एरर है। गोवा के बाद जब राज्यपाल ने उनसे मौका छीन लिया था, उसके बाद ये इस तरह की देरी करना, मेरे ख्याल से ये बहुत समझदारी भरी बात नहीं, कतई नहीं कही जा सकती
जी। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि अभी भी मौका है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बना लें?
जी बिल्कुल, वो राज्यपाल के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं अब तो कोई डेडलाइन की बात ही नहीं, आराम से फुर्सत से 15 दिन में बैठ के तय करें और सरकार बनाने का दावा पेश करें
जी,
और जाएं राजभवन वन में एमएलए की परेड कराएं। ऐसा होता रहा है इतिहास में, है ना।
तो जी बहुत शुक्रिया अनुराग। एक दफा फिर हम चलते हैं मुंबई, वहां पे शरद पवार अब बोल रहे हैं, सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं।
हमने इसका डिस्कशन ही शुरू में किया तभी हमसे पहली बार बात हुई, और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी नीति क्या है, उनकी तैयारी क्या है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, चुनाव के लिए हमारा कॉमन मैनिफेस्टो था, इससे हमारे आपस में कोई रुकावट नहीं या कोई कमियाँ नहीं, मगर जब इनके साथ बैठेंगे तब हम नीचे बात करेंगे। अभी बात करने की प्रक्रिया हमने शुरू ही की नहीं, और इसे आज इस पर कहना ठीक है।
दीपक भाटी से दीपक भाटी से विचारता है, प्लीज जरा अपन थामा ना प्लीज।
तो کانگریس اور این سی پی کی بات کے بعد آخرکار کیا نتیجہ نکلتا ہے ہم آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور اب چلتے ہیں جھارکھنڈ۔ مہاراشٹر کے بعد اب جھارکھنڈ میں بھی بی جے پی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں بی جے پی کے سہیوگی آل جھارکھنڈ اسٹوڈنٹس یونین لوک جن شکتی پارٹی نے سے سیٹوں کے بٹواروں کو لے کر باتیں نہیں بن پا رہی ہیں۔ آج تو 19 سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے لیکن بی جے پی بتایا جا رہا ہے کہ 9 سیٹیں دینے کو ہی تیار ہے۔ سنیے رانچی سے روی پرکاش کی رپورٹ۔
جھارکھنڈ میں راشٹریہ جن تانترک گٹھ بندھن کا بھوشیہ اگلے کچھ گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ ابھی رانچی میں بھاجپا کی مہتوپورن بیٹھک چل رہی ہے، اس کے بعد پارٹی اپنے امیدواروں کی دوسری سوچی جاری کر دے گی۔ اس کے ساتھ یہ سسپنس ختم ہو جائے گا کہ جھارکھنڈ ودھان سبھا کا یہ چناؤ بھاجپا اکیلے لڑے گی یا اس کا اپنے پارمپرک سہیوگی آجسو سے گٹھ بندھن ہوگا۔ پچھلے دو دنوں میں ان دونوں پارٹیوں کے بیچ تلخی کافی بڑھ گئی ہے۔ بھاجپا نیتاؤں کو اس بات کا ملال ہے کہ آجسو نے گٹھ بندھن کی پرواہ کیے بغیر نہ کیول ان کی پارٹی کے پردیش ادھیکش لکشمن گلوا کے خلاف کینڈیڈیٹ دے دیا بلکہ ودھان سبھا میں بی جے پی کے مکھیہ سچیتک رادھا کرشن کشور کو بھی آجسو نے اپنی پارٹی کی سدستا دلا دی۔ چرچا ہے کہ وہ آجسو کے ٹکٹ پر چناؤ لڑیں گے۔ اس بیچ آجسو پارٹی کے پرمکھ اور پورو اپ مکھیہ منتری سدیس مہتو نے رانچی میں ایک پریس کانفرنس کر کہا کہ وہ بھاجپا کے نرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
ہم نے اپنی اور سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے شیرش نیتریتو کے سامنے اپنے وشیوں کو ہم نے رکھا ہے۔ اپنے میں نے کہا کہ دو وشے ہمارے تھے، ایک تو ایک کامن ایجنڈا پر ہم اس راجی کو لانے دینا چاہتے تھے کہ بھائی دو دل ملیں گے تو دونوں دل اپنے اپنے ایجنڈا کے لیے کام نہ کرے بلکہ راجی کے مولبھوت وشیوں کو اپنا ایجنڈا میں شامل کرے اور ان کا نیتریتو ایک راجنیتک دل کے روپ میں یا گٹھ بندھن کے روپ میں ہم سب کو کرنا چاہیے۔ جب تک سہیوگی دل کے ساتھ بات چیت نہ ہو ہماری بات چیت کی گتی ودھی کنٹینیو ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلا سوچی نکلا ہے جو ہمارے سہیوگی دل کی اور سے نکلا ہے۔
بھاجپا اور آجسو نے پچھلا لوک سبھا چناؤ ساتھ مل کر لڑا تھا۔ سال 2014 کا ودھان سبھا چناؤ بھی ان پارٹیوں نے گٹھ بندھن کے تحت لڑا۔ آجسو پارٹی مکھیہ منتری رگھوور داس کے نیتریتو میں چل رہی بھاجپا گٹھ بندھن کی موجودہ سرکار میں بھی شامل ہے۔ ان کے بیچ کا موجودہ وواد دراصل کچھ سیٹوں کو لے کر ہے جہاں دونوں پارٹیاں اپنا امیدوار اتارنا چاہتی ہیں۔ بھاجپا کے ایک ذمہ وار نیتا نے نام گوپنیے رکھنے کی شرط پر بی بی سی سے کہا کہ اگر آجسو نے بی جے پی کے جھارکھنڈ پرمکھ لکشمن گلوا کے خلاف کینڈیڈیٹ واپس نہیں لیا تو یہ گٹھ بندھن ٹوٹ سکتا ہے۔ اس بیچ این ڈی اے کی ایک اور سہیوگی لوجپا نے بھی جھارکھنڈ میں بی جے پی کے خلاف چناؤ لڑنے کی گھوشنا کر دی ہے۔ پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش چراغ پاسوان نے دیوگھر میں کہا کہ لوک جن شکتی پارٹی جھارکھنڈ کی 50 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی۔
نہیں بالکل، ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے پردیش ادھیکش ہیں جرمنڈی سے اور انہوں نے کافی سمے سے انہوں نے وہاں پہ محنت کر رکھی تھی، چھیتر میں کاریہ کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ کئی اور ہمارے پرتیاشی اور 6 سیٹوں کی ہم لوگوں نے گٹھ بندھن کے بھیتر ہم لوگوں نے مانگ کی تھی اور ہم لوگ چاہتے تھے، میں ضرور یہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ گٹھ بندھن کے تحت ہم لوگ ان سیٹوں پر ہم لوگ چناؤ لڑے۔ ہماری راجیہ اکائی کی طرف سے دباؤ ضرور تھا کہ ہم لوگوں کو اکیلے یہاں پر چناؤ لڑنا چاہیے۔ کئی ایسے پرتیاشی ہیں جو پوری طریقے سے سکشم ہیں اکیلے چناؤ لڑ کر جیتنے میں۔
لوجپا نے پچھلا ودھان سبھا چناؤ بی جے پی کے ساتھ لڑا تھا، تب انہیں گٹھ بندھن کے تحت 1 سیٹ ملی تھی اور پارٹی وہاں سے ہار گئی تھی۔ آجسو پارٹی بھی گٹھ بندھن میں شامل تھی، تب اسے 8 سیٹیں ملی اور ان کے امیدوار 5 سیٹوں پر وجے ہوئے تھے۔ اس بیچ بھاجپا کے پردیش پروکتا پرتول ناتھ سہدیو نے آجسو کو دھیرے رکھنے کی نصیحت دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بات چیت کا کرم جاری ہے، انہوں نے سوچی دی ہے، تو ہم بھی آجسو سے آگرہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ جب بھی بات چیت کا کرم اس طریقے سے جاری رہتا ہے تو بہت ساری سمبھاونائیں رہتی ہیں اور ہمارا گٹھ بندھن کوئی کانگریس کی طرح اور جے ایم ایم کی طرح موقع پرستی کا گٹھ بندھن نہیں ہے، وکاس کے مدعے پر بنا گٹھ بندھن ہے۔ اور ابھی بھی آشاوان ہے کہ آجسو جو ہے وہ ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر اچھی نرنے لے گی۔
این ڈی اے کی ایک اور سہیوگی جدیو نے پہلے ہی الگ چناؤ لڑنے کی گھوشنا کر رکھی ہے۔ ایسے میں جھارکھنڈ کی سیاست میں اگلے کچھ گھنٹے کافی مہتوپورن ثابت ہونے والے ہیں۔ اس دوران یہ طے ہو جائے گا کہ مہاراشٹر میں منہ جلا چکی بھاجپا جھارکھنڈ میں کیا رنتی اپناتی ہے۔ روی پرکاش، بی بی سی، رانچی۔
اور اب بھارت کی راجنیتی سے انتراشٹریہ راجنیتی کی اور چلتے ہیں ہانگ کانگ۔ ہانگ کانگ میں لمبے سمے سے چل رہے لوک تنتر سمرتھک پردرشن سوموار کو ایک بار پھر ہنسک ہو گئے۔ پولیس نے ٹوسو میں ایک کارکرتا پر گولی چلائی، اس کے بعد ہانگ کانگ میں کارکرتاؤں نے پھر سے سڑکوں کو اوردھ کر دیا ہے اور پولیس کے ساتھ لگاتار جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ بی بی سی سنواداتاؤں کی بھیجی رپورٹ کا سار سنیے سرشٹی شریواستو سے۔
ہانگ کانگ میں بیتے 5 مہینوں سے چل رہے لوک تنتر سمرتھک پردرشنوں میں سوموار کا دن سب سے ہنسک دنوں میں سے ایک رہا۔ کئی جگہوں پر پولیس نے پردرشنکاریوں کو تتر بتر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاروں کا استعمال کیا۔ دا दंगारोधी पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसके बाद हांगकांग के विश्वविद्यालय में कई झड़पें हुई हैं। रेलवे लाइन पर कुछ संदिग्ध सामान मिलने के बाद यात्रियों को तुरंत ट्रेन खाली करने के लिए कहा गया। कुछ ट्रेनें देर से पहुंची, कईयों को रद्द कर दिया गया। पुलिस ने कई यात्रियों की तलाशी ली है, जिसके कारण कई स्टेशनों पर लंबी कतारें देखी गईं। हांगकांग पुलिस निगरानी टीम के एक पूर्व सदस्य रह चुके व कानून की पढ़ाई करने वाले एक छात्र एरिक चेंग ने कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को गंभीर बताया है।
मैंने पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा है और यह बेहद चौंकाने वाला है। शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों की ऐसी प्रतिक्रिया इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात थी। कमांडर ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वह उस पुलिस अधिकारी के वकील हों और उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें कर रहे थे। इससे मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि इसका मतलब है कि पुलिस का शीर्ष प्रबंधन अपने एक अधिकारी के लिए निष्पक्षता के सभी नियम तोड़ रहा है।
हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते सुरक्षा कारणों से हांगकांग में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को मंगलवार को बंद रखा गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने एक व्यक्ति को आग के हवाले कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने इस पर कहा है कि वे इस मामले को हत्या के प्रयास की तरह ही देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
ये थी सृष्टि श्रीवास्तव। और अब बात अयोध्या राम मंदिर की। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वहां राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। जहां पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया गया था, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए केंद्र सरकार को जिस ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया है, उसका स्वरूप क्या होगा। लंबे अरसे से राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे विश्व हिंदू परिषद और निर्मोही अखाड़ा की उसमें कोई भूमिका होगी या नहीं। अदालत ने अपने फैसले में मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। मुसलमान क्या मस्जिद बनाएंगे और अगर बनाएंगे तो कहां? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में अयोध्या पहुंचे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
ये पुजारी बीते 25 सालों से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। छबीले सरन एक पुजारी हैं।
अयोध्या तब स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग धाम, क्योंकि बहुत लोग मंदिर के संघर्ष करते करते स्वर्गवासी हो गए। कितने लोग, मेरे सामने एक लड़का जो था 30 साल की उम्र में मंदिर के संघर्ष करते करते प्राण दे दिया और हम लोग बचे थे, लेकिन अब लग रहा है कि हम लोग को प्राण बच जाएगा। प्राण नहीं देना पड़ेगा और हम लोग देख लेंगे। जो बुजुर्गों का सपना था वो साकार होने वाला है।
विश्व हिंदू परिषद के नेता और पूर्व सांसद राम विलास वेदांती कहते हैं,
अब जब नई अयोध्या बनेगी, जब नया राम जन्मभूमि बनेगा, तो अयोध्या का नया रूप प्रस्तुत होगा। अयोध्या की नई सड़कें बनेगी, अयोध्या में नए मकान बनेंगे, अयोध्या में मंदिरों की व्यवस्था होगी।
यह है अयोध्या का कारसेवकपुरम। यहाँ राम मंदिर के निर्माण का काम विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में कई साल से जारी है। अब अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार को इस काम के लिए एक ट्रस्ट बनाना है, तो क्या आगे भी मंदिर निर्माण में वीएचपी की भूमिका होगी?
विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि अभी भी विश्वास है कि ये पत्थर जो तराश के रखे हैं, समाज ने इसको दिया है। 125 हमने लिया था 1989 में, और संपूर्ण जो एक 275,000 गांव से जब आई ये शिलाएँ, मतलब धन मिला 125 रुपये, तो ये लगा कि इन पत्थरों को जरूर वहाँ पर लगाने का कार्य प्रारंभ होगा, और वह समय आ गया है कि हम इसको वहाँ पर लगाएं।
अब तक मंदिर निर्माण की कोशिशें निजी हाथों में थीं, लेकिन अदालत के आदेश के बाद अब ऐसा शायद ना रह जाए। फिर भी यहाँ के साधु संत मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री इनकी राय के बिना ट्रस्ट नहीं बनाएंगे,
जैसा कि रामविलास वेदांती ने कहा।
मुझको विश्वास है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के संतों को विश्वास में लेकर, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्वास में लेकर अयोध्या में मंदिर बनाने का काम प्रारंभ करेंगे।
मंदिर के निर्माण और इसकी देखभाल को लेकर हिंदू संस्थाओं के बीच विवाद की आशंका से भी इनकार नहीं है।
अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
कि आने वाले दिनों में दावेदारी को लेकर के विवाद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, जिनको अपना रोजगार भी दिख रहा था, अब कहीं ना कहीं ये दावा जो खारिज हुआ है उसमें अंदर कलह मच गई है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले से सोच थी कि जो है पुजारी बनेंगे तो हमारे पक्ष में आएगा, जो चढ़ावा चढ़ेगा मुझे मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं ये एक आगे चल के विवाद तो लेगा।
और मस्जिद के निर्माण के लिए जो अदालत ने 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही है, क्या अयोध्या के मुसलमान इस फैसले से खुश हैं? स्थानीय मस्जिद के इमाम मौलाना जलाल अशरफ का कहना था,
जो फैसला दिया है वो वाकई हकीकत की बुनियाद पे नहीं दिया जो है, समझा आपने, उसको फैसला आस्था पे मान लीजिए या आपकी मेजॉरिटी पे मान लीजिए, उस पर फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको मानना है।
मंदिर का निर्माण कौन करेगा, कैसे होगा और मस्जिद बनी तो कहाँ बनेगी, इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते तब तक सारी निगाहें अयोध्या पर टिकी रहेंगी। जुबैर अहमद, BBC अयोध्या।
दिल्ली में जहरीली हवाओं का कहर जारी है। आज फिर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार रहा। एम्स दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जहां देश भर के मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। मरीजों में कई ऐसे भी हैं जो होटलों का खर्च नहीं उठा सकते और एम्स के आसपास फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही दोहरी मार झेल रहे कुछ मरीजों से बात की BBC नेपाली सेवा की हमारी साथी सृजना श्रेष्ठा ने।
दिल्ली की गंदी हवाओं से और ज्यादा जो है तबीयत बिगड़ने लगी है।
सभी जानती है बुरा हवा है, डर तो लगती है।
यहाँ पे सोते सोते और बीमार पड़ गए हैं।
ऑलरेडी कैंसर की बीमार हूँ, फिर आसमान के नीचे रात भर लेटना है। यहाँ की जो प्रदूषण भरी हवा है ये हमारे गले को खराश में लाती है, सांस लेने में दिक्कत करती, खाना अच्छा नहीं लगता है। अभी कीमो चढ़ते हैं, डॉक्टर साहब देते हैं, तो इसलिए 4 दिन पहले आना पड़ता है।
दिल्ली का हवा के बारे में नहीं जानते, सुनाते ही पड़ेगा। ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। 21 तारीख को आए हैं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, हम क्यों सो रहे हैं पता नहीं।
बच्चे के पेट में प्रॉब्लम, पैनक्रिया में, ये प्रदूषण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बच्चे को भी, वो तो मरीज है ही, उसको तो दिक्कत आ ही रही है। 3 दिन से बाहर सो रहा हूँ रोड पे। 4 तारीख को बुलाया डॉक्टर ने, 4 तारीख को कुछ इलाज नहीं हुआ डॉक्टर ने किया। हम 4 लोग आए थे, ये दिल्ली के प्रदूषण से लग रहा है कि हम सब लोग बीमार हो जाएंगे।
तो मैंने सुना है दिल्ली के हवा अच्छा नहीं करता है पेशेंट के लिए, पर क्या करूंगी, मजबूरी के लिए रोड पे रहना पड़ता है।
तो प्रदूषण का कहर। और एक बार फिर चलते हैं मुंबई, मयूरेश के पास। मयूरेश, क्या जानकारी है आपके पास?
जी, अभी अहमद पटेल और शरद पवार दोनों ने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो खत्म हो चुकी है, और सबसे अहम बात इसमें यह है कि दोनों ने तय कर लिया है कि पहले शिवसेना और NCP के बीच बात होगी, क्योंकि वो पुराने अलायंस हैं, तो पहले वो बात पूरी करेंगे और फिर शिवसेना से बात हो सकती है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में बात होगी। तो अब ये तय है कि जो एजेंडा है वो शिवसेना NCP यानी आघाड़ी जो है वो तय करेगी। उन्होंने ये कहा है कि विचारधारा के बारे में, शिवसेना के बारे में कांग्रेस को कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो उन्होंने फिर से ये कहा कि नहीं, हमें पहले मैं और शिवसेना, मैं और NCP बात कर लेते, कांग्रेस और NCP, फिर बाद में सारी बातें हो जाएंगी। तो ये सबसे अहम बात है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि शिवसेना ने सिर्फ कल कांग्रेस को अधिकृत तरीके से ऑफिशियली कॉन्टैक्ट किया है, तो और बहुत सारी बातें होनी है और हम दोनों के बीच बातें पूरी करेंगे और फिर ही शिवसेना की बात होगी।
जी, बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका इस जानकारी के लिए। और अब एक बार फिर प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि शिवसेना को समर्थन देने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को राजनीतिक शरण देने के लिए मैक्सिको ले जाने वाला विमान पैरागुए में उतर चुका है। मोरालेस ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद मंगलवार को मैक्सिको में राजनीतिक शरण की पेशकश स्वीकार की थी। इसराइल के नेता बिन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इसराइल द्वारा इस्लामिक जिहाद के कमांडर की हत्या के बाद गाजा में चरमपंथियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। गूगल ने एक जानी मानी मेडिकल कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इसे लाखों अमरीकी नागरिकों के निजी डेटा तक पहुंच दे दी है। BBC समाचार।
दिन भर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद यानी मुझे अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।